यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी की समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम अत्यंत पावन दिवस पर श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी जिनका आज तिरोभाव दिन है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माधवेन्द्रपुरी के गुणों का वर्णन करना असंभव है, तो इसलिए ऐसे आचार्य अगर कहते हैं तो हमारी कोई योग्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हीं के दिए हुए वचनों से जो कुछ भी पूर्ति देता है याद देता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भौतिक संसार जिसको त्रिभुवन कहा जाता है, सत्यलोक तक, पाताल से सत्यलोक तक, उसके बाद विरजा नदी और उसके परे ब्रह्म ज्योति में सम्मिलित अनेकों वैकुंठ लोक, अनगिनत असंख्य वैकुंठ लोक, ये भगवान की सृष्टि है। और इस सृष्टि का भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि, इनका सर्वोच्च बिंदु है श्री गोलोक वृंदावन। इस गोलोक वृंदावन में चार हिस्से हैं, वृंदावन, गोकुल वृंदावन, मथुरा, द्वारका और नवद्वीप। भगवान जब जब संसार में, वैदिक संसार में कोई भी धर्म की ग्लानि आती है, धर्म अधर्म में बदल जाता है, तब भगवान अनेकों अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन ऐसे प्रकार की जो श्रृंखला होती है अनेकों प्रकार के अवतारों की, हे हर युग में, हर दिव्य युग में चलते रहती है। और इस प्रकार के जब चार युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसको एक दिव्य युग माना जाता है। ऐसे 71 दिव्य युग जब होते हैं उसको एक मनवंतर कहा जाता है, एक मनु का। और ऐसे 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, दिन के 12 घंटे। इसी प्रकार से 12 घंटे की रात भी होती है। उसमें से जो बीच वाले वैवस्वत मनु है, उनके काल में 28वें दिव्य युग में भगवान श्री कृष्ण, जो अवतार नहीं लेकिन स्वयं अवतारी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारे अवतारों के जो मूल है, वे स्वयं इस धरती पर आते हैं। और कविराज गोस्वामी कहते उसी दिव्य युग में श्री कृष्ण के जाने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जबकि वे सर्व कारण कारणम है, हर कारण के कारण, जबकि वो त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, जबकि वो हर हृदय में बैठे हुए हैं और हर एक के मन की बात को जानते हैं। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके ही लीला का एक हिस्सा ऐसा है कि कोई कोई चीज वो नहीं जानते हैं। सब कुछ जानते हुए कुछ चीज नहीं जानते, क्या चीज है ऐसे? उन्हीं की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनका जो उत्कट प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये प्रेम कितना गहरा है, ऐसा प्रेम उनको क्यों लगता है, ये वो नहीं जानते। इसलिए श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर स्वयं कृष्ण जब आते हैं, वही है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और जब इस भाव को वो समझते हैं, भगवान के प्रति जो उत्कट प्रेम है उसके प्रति जब उसका जब एहसास करते हैं, गोपियों का प्रेम, श्रीमती राधा रानी का प्रेम, तो वो चाहते हैं क्यों न इस प्रेम को सबको बांट दे। और उसी को सबको बांटने के लिए वे स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आते हैं। ये अद्भुत अवतार है। हमारे कोई कोई आचार्य कहते हैं कि इनको अवतार कहना गलत है, क्योंकि स्वयं अवतारी है। श्री कृष्ण चैतन्य और राधा कृष्ण ये बिल्कुल अभिन्न है। जैसे कृष्ण अवतारी है, चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी है। तो क्या देने के लिए आए हैं? ये प्रेम भक्ति, सबके हृदय में प्रेम भक्ति जागृत करना। और ऐसा महान कार्य करने के पहले, जब जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो उनके पहले कोई कोई लोगों को भेज देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को भेज देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो वृक्ष है भक्ति का, उसके बीज और उसके मूल है। ब्रह्म मध्व संप्रदाय में अनेक आचार्य हुए, लेकिन माधवेंद्रपुरी के काल तक किसी ने राधा और कृष्ण इनकी जो प्रेममयी लीला है उसका जो सर्वोत्तम भाव है जो माधुर्य रस, ये अभी तक किसी ने अनुभव नहीं किया था, या अनुभव किया था तो उसको प्रदर्शित नहीं किया था, लोगों में वितरित नहीं किया था। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले आचार्य थे जिन्होंने इस माधुर्य भाव को, इस प्रकार की प्रेम भक्ति को लोगों में बांटा। इनका वर्णन कविराज गोस्वामी इस प्रकार से करते हैं कि माधवेंद्रपुरी, इनको ये पता ही नहीं रहता था कि आज ये दिन है कि ये रात है। 2400 घंटे हर क्षण भगवान के याद में, भगवान के विरह में इतने उन्मत्त रहते थे कि कभी रोते थे, कभी गिरते थे, कभी हंसते थे, कभी लेटे रहते थे। बाहरी संसार की कोई भावना उनको त्रस्त नहीं करते थे। और इस प्रकार का उत्कट प्रेम होते हुए भी वो अपनी साधना बराबर से करते थे। वो क्या सोचते थे कि अगर मैं गलत लोगों के संग में आ जाऊंगा तो कृष्ण को भूल सकता हूं, इसलिए कभी कभी कई दिन चले जाते थे जब वो किसी से बात ही नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत डरते थे कहीं मेरे मुख से कोई प्रजल्प ग्राम में कथा न निकल जाए। देखिए किस प्रकार की भावना है, जबकि वो हृदय में भगवान को एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पा रहे हैं। जो सर्वोत्तम नियम है, सारे जो वेदों के विधि निषेध है उसमें सर्वोत्तम नियम क्या है, कृष्ण को हमेशा याद रखो, कृष्ण को कभी मत भूलो। हमेशा याद रख रहे हैं फिर भी वो सोच रहे हैं कहीं मेरे मुख से प्रजल्प न निकले। बहुत सीखने जैसी बात है, हमारा मन तो जप के समय में भी कृष्ण को याद नहीं करता कभी कभी, लेकिन फिर भी हम आसानी से लोगों से इस प्रकार से बातें करते जिसमें हमको कृष्ण को भुला देना काफी आसान है। लेकिन माधवेंद्रपुरी क्या कहते थे, अगर मैं लोगों के साथ बार वार्तालाप करूंगा जिनको कृष्ण में कोई रुचि नहीं है तो मैं कृष्ण को भूल सकता हूं। इसलिए कई दिन निकल जाते थे जब वो अकेले ही घूमते रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको कोई बीमारी थी अकेलेपन की या अकेले रहना चाहते थे, नहीं, जब उनको कोई भक्त मिलते थे, जैसे नित्यानंद प्रभु जब उनको मिले तो कई दिन वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाए, वो बोलते बोलते रोक नहीं सके, एक दूसरे के साथ कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहे। माधवेंद्रपुरी जब जाते थे कभी वो घने बादल को देखते थे मूर्छित हो जाते थे, ये उनका प्रेम है। कृष्ण को जैसे याद करते मूर्छित हो जाते थे, किसी के पास भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर हम में से कोई ऐसे सोच रहा है कि हम लोग बहुत एडवांस हो गए, अभी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत प्रगति कर चुके, तो ये करके देखना चाहिए, किसी से कुछ नहीं मांगने का और फिर ऐसे घूमते रहो, किसने दिया तो कुछ खाओ नहीं तो मत खाओ। कितने लोग कैसे कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ये इसी प्रकार से जीते थे कि एक क्षण के लिए भी कृष्ण को वो भूलना नहीं चाहते थे। विष्णु पुराण में कृष्ण को भूलने का मतलब क्या है ये बताया है। अगर हम कृष्ण को एक क्षण के लिए भूलते हैं तो संसार में जो सबसे बड़ी हानि है वो हमें हो गई है, ऐसे विष्णु पुराण कहता है। मतलब आपके सारे धन दौलत प्रॉपर्टी ये शरीर ये सब कुछ छूट गया तो चलेगा, लेकिन कृष्ण को एक क्षण के लिए नहीं भूलना चाहिए, ये विष्णु पुराण कहता है। और इसी प्रकार का जीवन श्रीपाद महादेवपुरी जीते थे। और इनकी योग्यता क्या है ये उनके शिष्यों से पता चलती है। कौन है इनके शिष्य? अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, ईश्वरपुरी, अनेक महान महान, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ऐसे महान व्यक्ति उनके शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन की तरफ भागने लगे, लेकिन यहां पर भक्तों की ऐसी इच्छा थी कि कम से कम कुछ दिन हम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको फुसलाकर फिर से अद्वैताचार्य के घर में लेके आए। कई दिन तक सच्ची माता ने उनको भोजन खिलाया, भक्तों ने बहुत अच्छा कीर्तन किया, चैतन्य महाप्रभु उनके साथ नृत्य करते रहे, गाते रहे, कीर्तन करते रहे। और जब बहुत समय हो गया तो महाप्रभु ने कहा कि अभी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सच्ची माता से उन्हें आज्ञा ली कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो सच्ची माता ने कहा कि देखो वृंदावन तो बहुत दूर है, अगर आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे वहां पर भी वही कृष्ण है, तो जगन्नाथपुरी और नवद्वीप ये इस प्रकार से है जैसे एक ही घर के दो कमरे, लोग यहां वहां आते जाते रहते हैं, आपके बारे में मुझे पता चलेगा, आप जगन्नाथपुरी में रहो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मेरा शरीर तो आपका है, लेकिन मैं किसी मूर्खता के वश ये संन्यास ले लिया हूं, तो कम से कम ये आज्ञा मैं आपके पालन करूंगा। तो इस प्रकार से सच्ची माता को प्रदक्षिणा करके चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं। उनके साथ नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंदत, चार लोग निकलते हैं। उनके पीछे पीछे अद्वैताचार्य रोते रोते जा रहे हैं। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। सारे भक्त रो रहे हैं और अद्वैताचार्य भी पीछे पीछे जाते जाते रो रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे थे कि सन्यासी कैसे होना चाहिए। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, वो चलते गए भगवान का नाम लेते हुए। कुछ समय के बाद अद्वैताचार्य को मुड़कर बोले, देखो अगर आप ही इसी प्रकार से रोते रहेंगे तो बाकी भक्त लोग कैसे रहेंगे, आपको भी फिर जाना पड़ेगा, और अगले साल आप जरूर जगन्नाथपुरी में आइए, बीच बीच में मैं गंगा स्नान के लिए आया करूंगा। तो हम दूर तो जा रहे हैं लेकिन फिर से मिलने वाले हैं, इसलिए आप फिर से जाओ, वापस चले जाइए। अद्वैताचार्य फिर से चले जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा आगे चलाते हैं। यात्रा करते करते जब भी कभी बीच बीच में नदी आती थी, बड़े बड़े ग्राम आते थे, शहर आते थे, तो बहुत सारे लोग मिलते थे, कोई भयंकर लोग भी मिलते थे, लेकिन किसी ने चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य देखकर, उनकी भक्ति देखकर किसी ने उनको रोका नहीं। आस्ते आस्ते वे रेमुना गांव में आ गए। रेमुना में मंदिर छोटा सा है और वहां पर बहुत प्रसिद्ध भगवान का स्वरूप है गोपीनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस मंदिर में बहुत सुंदर नृत्य किया, सब लोग देख के अत्यंत प्रसन्न हो गए और महाप्रभु जी दंडवत करने लगे। वहां पर मूर्तियां ऐसे बिल्कुल ऐसे स्थान पर है जैसे ग्राउंड लेवल है, उसी लेवल पर मूर्तियां हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रणाम करने लगे तो गोपीनाथ का जो मुकुट था और उनके जो फूलमाला है चैतन्य महाप्रभु के सर पे आके गिरी। तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, वहां के ब्राह्मण वो समझ लगे कोई महान व्यक्ति है, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का हर प्रकार से उनका स्वागत किया, उनके लिए जो जो सुविधा कर सकते सब किया। और तभी शाम का समय हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। और रात के समय में फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे इस गोपीनाथ के बारे में, क्या आप जानते हो ये कौन से विग्रह हैं? इनका नाम है खीर चोर गोपीनाथ। मेरे गुरु महाराज श्रीपाद ईश्वरपुरी, इन्होंने मुझे जो कहानी बताई मैं आज आपको बताऊंगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, पार्षदों को श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाते हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन में आए थे, और वृंदावन में सारे जो 12 वन हैं उनकी परिक्रमा करने के बाद वे गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के अंत में गोविंद कुंड में स्नान करके उसी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं रात का विश्राम करने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि माधवेंद्रपुरी की आदत नहीं थी कि भिक्षा मांग कर खाए, अगर किसी ने दिया तो खाते थे, नहीं दिया तो ऐसे ही सो जाते थे। तो माधवेंद्रपुरी बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो अचानक एक सुंदर बालक, ग्वाल बाल, एक पात्र लेकर, मटका, दूध से भरा हुआ मटका लाकर देता है, कहता है कि आपके लिए मुझे मैंने दूध भेजा है, मेरे गांव से दूध भेजा गया है, क्योंकि कोई स्त्रियों ने देखा पानी भरते हुए गोविंद कुंड में कि आप इसी प्रकार से बैठे हो, किसी से कुछ मांगा नहीं और शायद आपने कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूं। माधवेंद्रपुरी ने बालक से पूछा कि आप कौन हो? मैं गोपाल हूं और बाजू के गांव में रहता हूं। हमारे गांव में जो जो लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो किसी न किसी से कुछ भिक्षा मांगकर खाते हैं, और जो कोई किसी को कुछ नहीं मांगता उसको मैं स्वयं कुछ खिलाता हूं, इसलिए मैं आपके लिए दूध का पात्र लाया हूं, आप इसको खा लीजिए, उसके बाद कुछ समय के बाद आके मैं पात्र लेके जाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाकर अभी गाय को दूध निकालना है। ऐसे करकर वो बालक कुछ देर तक चला गया और अदृश्य हो गया। तो माधवेंद्रपुरी देखने रहे कहां गया है बालक, बहुत सुंदर बालक, मधुर वाणी वाला बालक। और फिर उन्होंने दूध पिया और केवल वो बालक के बारे में सोचने लगे, कौन था ये बालक, और इस प्रकार से वो सो नहीं सके। लेकिन जब रात खत्म होने को आई तो कुछ देर के लिए उनको नींद लगी, और नींद में उनको सपना आया। सपने में वही बालक, सुंदर बालक, वो आकर कहने लगा, माधवेंद्रपुरी आप मेरे साथ आइए, मैं कब से राह देख रहा हूं कि आप कब आएंगे और कब मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। मैं इसी जंगल में बहुत अंधेरे में पड़ा हुआ कई साल से, और मुझे कभी गर्मी लगती है तो कभी बहुत तेज वर्षा होती है तो कभी ठंड पड़ती है, मेरा शरीर जलता है, भूख भी जोर से लगी है, तो कृपा करके आप सब लोग को लेकर मेरा यहां से मुझे बाहर निकालो। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे ये सपना था कि सत्य था, उठ गए, उन्होंने तुरंत स्नान किया और वो सोचने लगे कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आए लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका। और इस प्रकार की एक अलग प्रकार की विरह की भावना के कारण वो मूर्छित हो गए। लेकिन फिर से उठकर उन्होंने सोचा कैसे मूर्छित होने से क्या लाभ है, भगवान ने कुछ सेवा दी है उसको करना चाहिए। तो तुरंत गांव में गए और गांव वालों को बताया कि इस जंगल में स्वयं गिरिधारी गोवर्धनधारी ये पड़े हुए हैं। अर्थात सपने में उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ सालों पहले जो मुसलमान लोग थे उनका आक्रमण हुआ था, इसलिए पुजारी ने मुझे वहां पर छुपा के रखा था, लेकिन वो सब लोग भूल गए, अभी वो कोई जीवित भी नहीं है, तो किसी कोई जानता नहीं कि मैं वहां पर हूं। तो गांव वाले तुरंत अपने अपने हथियार लेकर वहां चले गए, उन्हें झाड़ी को तोड़ा और मार्ग निर्माण किया, और जब देखते हैं अत्यंत सुंदर विग्रह श्री गोपाल का वहां पर था, कोई उठा नहीं सका, तो बहुत तगड़े लोगों को बुलाया गया, सब लोगों ने मिलकर उसको गोवर्धन के ऊपर लेके गए और वहां पर 9 बड़े बड़े पात्र मिट्टी के, इसमें गोविंद को उनका पानी लाया गया, उसको छाना गया और तैयार रखा, उससे स्नान कराया। स्नान करने के बाद भगवान को तेल से मालिश किया गया तो उनका शरीर एकदम तेजस्वी होने लगा। और जैसे ये कार्य हो रहा था, अलग अलग दूसरे गांवों से अनेकों लोग आने लगे। सब लोग कोई चावल लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, कोई घी लेके आया, कोई दही लेके आया, दूध लेके आया, मिष्ठान्न लेके आया, अलग अलग प्रकार के धान्य और मिष्ठान्न, कोई कपड़े लेके आया। माधवेंद्रपुरी ने सबको कहा कि ये सब लोग यहां पर रखो और सब लोग पहले पानी लेके आइए, फिर पंचगव्य और पंचामृत इनसे भगवान का अभिषेक कराएगा। और सब कुछ माधवेंद्रपुरी के दृष्टि के अनुसार हो रहा था। माधवेंद्रपुरी ने भगवान को पंचामृत में स्नान करने के बाद एक बहुत सुगंधित तेल इससे मालिश कराया और उसके बाद फिर से एक बार ठंडे पानी से स्नान करके उनको भोग चढ़ाया और फिर एक अन्नकूट महोत्सव ये शुरुआत हो गया। कई ब्राह्मण लग गए। अभी ये केवल 5-6 घंटे की बात है, सवेरे ही भगवान को निकाला गया और 6 घंटे में इतने लोग इकट्ठा हो गए, इतनी सामग्री इकट्ठा हो गई कि कम से कम 9 ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के अनाज को पकाने लगे, 6 या 7 ब्राह्मण अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाने लगे और 8-10 ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के मिष्ठान्न बनाने लगे और हजारों लोग भगवान के सामने नृत्य करने लगे, गाने लगे और सब लोग अचंभित थे कि कैसी लीला है भगवान की, कि भगवान ने इतने लोगों को कैसे लाया एकत्रित। अभी सवेरे तभी कोई टेलीफोन सेल फोन कुछ नहीं था, केवल ऐसे वार्ता फैलते गई। इसका कारण था गोपाल की कृपा और माधवेंद्रपुरी की भक्ति। माधवेंद्रपुरी की भक्ति इतनी प्रखर थी कि माधवेंद्रपुरी के कारण आज भी उस नाम को यतिपुर नाम से जाना जाता है। माधवेंद्रपुरी यति थे कि आज भी हम देखते हैं यतिपुर या यतिपुर कहते हैं उसको। तो एक अन्नकूट महोत्सव जिसमें माधवेंद्रपुरी ने अपने अलग अलग पत्थरों पर पलश के जो पत्ते होते हैं बड़े होते हैं हरे हरे रंग के, उसके ऊपर सारा अनाज चावल, उसके साइड में चपाती, उसके साइड में सब्जियां, उसके साइड में फिर अलग अलग प्रकार के मिष्ठान खीर दूध और भगवान को अर्पण करने के बाद भगवान को लास्ट में पान खिलाया गया कर्पूर का। फिर भगवान को सुलाना चाहिए तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि कोई बाज लेके आ जाओ, 4 पहिए लेके आए, उसके ऊपर भगवान को एक सुंदर वस्त्र पे सुलाया गया और उसके ऊपर एक चटाई डालकर टेम्पररी ऐसे एक शेड की गई। भगवान सोने के बाद फिर महादेवपुरी ने कहा अब ये सारा प्रसाद सबको बांटो, बूढ़ों को बांटो, बच्चों को बांटो, ब्राह्मणों को बांटो, स्त्रियों को बांटो, सबको बांटो। और ये सब होने के बाद में रात हो गई। फिर ये सब होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने थोड़ा सा चरणामृत लिया और सो गए। ये माधवेंद्रपुरी है, कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन सवेरे जैसे उठे तो दूसरे गांव के लोग आए, माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करके कहने लगे कि हम भी आज अन्नकूट महोत्सव करना चाहते हैं। तो माधवेंद्रपुरी तो बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने सबको बुलाया, बोला आज आपके गांव से। इस प्रकार से सैकड़ों दिन निकल गए, हर दिन अन्नकूट महोत्सव होने लगा। 2 साल बीत गए, यहां तक कि अभी आजूबाजू के गांव नहीं, आजूबाजू के प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह से लोग आने लगे। बीच में कोई मथुरा से बहुत बड़ा क्षत्रिय आया, उसने उसके लिए मंदिर बना दिया। हर गांव से जो व्यक्ति आता था एक एक गाय को लेकर आकर दान कर देता था। तो कुछ ही समय में गोपाल के पास हजारों गायें हो गई, अनेकों वस्त्र हो गए, अनेकों गहने हो गए, मंदिर भी हो गया। और वहां के जितने भी ब्राह्मण थे उनको वैष्णव दीक्षा देकर उनको पूजा में लगाया गया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए, 2 साल तक केवल अन्नकूट महोत्सव होते रहे। ये माधवेंद्रपुरी की ताकत भक्ति की। 2 साल के बाद में फिर से उनको स्वप्न में भगवान गोपाल ने दर्शन दिया कि आप तो मेरी सेवा बहुत सुंदर कर रहे हैं, मुझे ठंडे पानी से आपने नहलाया भी, लेकिन वो जो गर्मी थी इतने साल की, वृंदावन की गर्मी हम जानते हैं, उसके कारण मेरा शरीर आज भी जल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप जाकर जो मलेशिया का चंदन आता है जगन्नाथपुरी में मिलेगा आपको, वहां पर जाकर उस चंदन से मुझे लेप चढ़ाओ, तब मेरी ये गर्मी चली जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी, और उसी समय भगवान की योजना के अनुसार 2 बंगाली सन्यासी आ गए, ब्राह्मण सन्यासी। तो उनको माधवेंद्रपुरी ने पूरे मंदिर का जो कार्य है उसको सौंप दिया, उनको बताया किस प्रकार से करना चाहिए, और तुरंत उसी दिन सुबह वो निकल पड़े। ऐसा नहीं कि कोई प्लान कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा हो गई, भगवान ने बुलाया है, तुरंत निकल गए। निकलकर बंगाल के रास्ते से जाने लगे तो अद्वैताचार्य को मिले, अद्वैताचार्य ने उनसे दीक्षा ली, और इस प्रकार से चलते चलते वे भी रेमुना पहुंच गए। रेमुना में पहुंचने के बाद वो देख रहे थे कि रेमुना के जो गोपीनाथ है उनके श्री विग्रह की जो आराधना है, जिस प्रकार से ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। तो सोचने लगे कि इस प्रकार की भक्ति अगर यहां हो रही है तो यहां का जो भगवान को भोग चढ़ता है वो बहुत ही उत्तम होगा। अगर किसी को मांगे बिना कुछ मुझे मिल जाएगा तो मैं उसी प्रकार का भोजन मेरे गोपाल के लिए बनाऊंगा, ऐसे सोच रहे हैं। और उसी समय, संध्या का समय था, पुजारी 12 अलग अलग प्रकार के पात्रों में एक व्यंजन लेके आए भगवान को अर्पण करने लगे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ये अमृत केरी नाम की खीर है जो संसार में और कहीं नहीं बनती, केवल गोपीनाथ के मंदिर में बनती है, और इसका स्वाद ये अमृत के जैसा है, इसी के लिए उसका नाम है अमृत केली। तो तुरंत माधवेंद्रपुरी ने फिर से सोचा, अच्छा अगर ये मुझे खीर चखने को मिलेगी तो। और जैसे ये सोचा उनके हृदय में बिल्कुल एक अलग अपराध की भावना आ गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, भगवान को अभी तक भोग लगा भी नहीं और मैंने खाने की इच्छा कर ली। ये हमारे गृहस्थों के लिए सीखने की बात है, हम लोग भगवान को वो चढ़ाते जो आज हमको खाने का है। हाँ, हम लोग आज कुछ, आज मैं पिज्जा खाना चाहता हूं तो आज पिज्जा का भगवान को भोग लगेगा। पहले से हम लोग प्लान करते हैं हमको क्या खाना है, लेकिन केवल सोचने से कि मैं मिला तो अच्छा रहेगा, मुझे टेस्ट करने के बाद मैं भगवान को इसी प्रकार की भोग चढ़ाऊंगा। महादेव ने बहुत दुखी हो गए और तुरंत ही जैसे ही आरती लगभग खत्म होने को आई, वहां से निकलकर मार्केट में जाकर बैठ कर, जहां पर मार्केट अभी खत्म हो चुका था, एक जगह पर जाकर भगवान का भजन करने लगे। रात को पुजारी सो गए और सुबह होते होने के बहुत पहले ही भगवान पुजारी के सपने में आए, कहने लगे पुजारी उठो मंदिर में फिर से जाओ, वहां मैंने खीर का एक पात्र मेरे कपड़े के पीछे छुपा के रखा है, आपने जब उसको निकाला तो आपको पता नहीं चला क्योंकि मैंने उसको चुराया है और मैंने मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए चुराया है, तो आप इसको लेकर माधवेंद्रपुरी को जाके दे दो जो मार्केट प्लेस में बैठे हुए हैं। तो पुजारी तुरंत उठता है, स्नान करता है, फिर चला जाता है, द्वार खोलकर देखता है कपड़े के पीछे जाके, सही में एक पात्र है, तुरंत रोने लगता है, उसको आनंद होता है कौन महान भक्त यहां पर आया है जिसके लिए भगवान स्वयं चोरी कर रहे हैं। वो खीर का पात्र के लेकर ढूंढने लगा, चिल्लाने लगा, कौन है माधवेंद्रपुरी सामने आ जाइए, आपके लिए भगवान ने खीर का पात्र चुराया है। तो माधवेंद्रपुरी सामने आए, उनको खीर का पात्र देके दंडवत प्रणाम किए पुजारी ने कि आप कितने महान भक्त हैं कि आपके लिए भगवान चोरी कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी फिर से रोने लगे, खीर का पात्र लिया, एक जगह बैठकर सारी खीर खा ली, रोते रोते खा रहे हैं, कभी बेहोश हो रहे हैं, फिर से उठकर खा रहे हैं। जब खीर खा के हो गई तो पात्र को तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और टुकड़े को भी खाने लगे और इस प्रकार से सुबह उठकर फिर से उन्होंने गोपीनाथ का दर्शन किया। फिर सोचने लगे कि अगर सबको सवेरे सवेरे पता चलेगा गांव में कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है तो सब लोग मेरे दर्शन के लिए आएंगे, सब लोग सोचेंगे मैं कितना महान भक्त हूं, ये अच्छा नहीं है, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। ये एक उत्तम भक्त का लक्षण है, हमेशा किसी भी प्रतिष्ठा से वो दूर रहते हैं। असल में श्रील भक्तिदान सरस्वती इस प्रतिष्ठा को शुकर विष्ठा यानी कि जो सुअर है उसकी विष्ठा की तरह मानते हैं, इसके प्रति लालायित होना यानी शुकर की विष्ठा के प्रति लालायित होना है, इतने भयंकर माना गया है। लेकिन फिर भी भौतिक संसार का जो प्रभाव है उसके कारण हम इसी के पीछे भागते रहते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे। तो इतनी नम्रता इनके हृदय में है कि वो सोच रहे कि नहीं, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग मेरे पीछे भागेंगे, सब लोग कहेंगे माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त हैं, इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। तो वहां से निकल गए और जगन्नाथपुरी पहुंचे, लेकिन भगवान की कृपा अलग है। जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो पहले ही से लोगों को सबको पता था कि माधवेंद्रपुरी कौन है, तो भले ही भक्त उस प्रतिष्ठा से उस सम्मान से दूर भागता है लेकिन भगवान ऐसे ही भक्तों को उस प्रकार का सम्मान उस प्रकार की प्रतिष्ठा देते रहते हैं। और माधवेंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथ को देखकर वापस मूर्छित हो गए। फिर से उनको याद आया कि यहां पर इस प्रकार के जो उत्कट भाव है इसको दिखाने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरे गोपाल का जो कार्य है उसको करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने वहां के पुजारियों को ब्राह्मणों को एकत्रित किया, कहा कि गोपाल की आज्ञा है, आप अगर मदद करेंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने सब मिलकर राजा से कुछ चंदन मंगवाया, 237 किलोज, हाँ ऐसा एग्जैक्ट उसका वर्णन है, चैतन्य चंदन 237 किलोज, वो मंड मंड में कुछ बोलते हैं, उतना सारा चंदन उनको मिल गया। और उसके साथ में कापूर वो कुछ ग्राम मिला, हाँ उस समय के लिए बड़ी बात है ये, हाँ सब कुछ पैदल होता था। तो कुछ दो ब्राह्मणों को दो तीन लोगों को साथ में देकर बैलगाड़ी देकर ये पत्र लेकर कि ये राजा ने भेजा है, जगन्नाथपुरी से माधवेंद्रपुरी निकल चुके और फिर रेमुना में आए और सोचा कि आज के लिए भी यहां पर रुकेंगे। रात को सो गए, फिर से उनको खीर का पात्र मिला, सपने में फिर गोपाल आए। गोपाल कहने लगे, माधवेंद्रपुरी आपकी सेवा मुझे मिल गई, आपने इतना जो कठिन कार्य किया है वो मुझे प्राप्त हो चुका है। अभी आप, क्योंकि उस समय की बात है कि जब मुसलमान राजा बीच बीच में थे, वो कोई सन्यासियों को ऐसा बहुत बड़ा सम्मान नहीं देते थे, लूटते थे, इसलिए माधवेंद्रपुरी की जान को भी खतरा था, क्योंकि चंदन बहुत महंगा होता है, तो चंदन के लिए माधवेंद्रपुरी को कोई भी मार सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए गोपाल ने कहा कि ये जो गोपीनाथ है और मैं गोपाल, ये एक ही व्यक्ति है, आप ये सारा चंदन लेकर गोपीनाथ को चढ़ाइए। माधवेंद्रपुरी सवेरे उठकर सारे भक्तों को एकत्रित करके बोले, गोपाल की आज्ञा है कि आप ये चंदन लेकर गोपीनाथ को चढ़ाइए, आपके पास ये जो ब्राह्मण लोग हैं उनको लगाइए और दो चार व्यक्तियों को लगाइए, उनके पूरा जो तनख्वाह है मैं दे दूंगा। और इसी प्रकार से एक महीने तक लगातार भगवान को चंदन का लेप लगता रहा। और उसके बाद फिर माधवेंद्रपुरी वहां से चले गए, फिर वहां से, क्योंकि मई का महीना था, अक्षय तृतीया से शुरू होती चंदन यात्रा, माधवेंद्रपुरी फिर से जगन्नाथपुरी गए चातुर्मास के लिए। ये कथा को कहते हुए चैतन्य महाप्रभु फिर नित्यानंद प्रभु को, दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित, मुकुंदत, इनको कहते हैं कि आप ही विचार करिए किस प्रकार की भक्ति माधवेंद्रपुरी के पास थी, आप निर्णय दीजिए कि कैसे भक्त होंगे जिनके सपने में बार बार भगवान आकर अपनी निजी सेवा चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि माधवेंद्रपुरी उनके पास आकर उनकी सेवा करते रहे, ऐसा कौन सा भक्त है। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं माधवेंद्रपुरी का गौरव करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब कुछ समय के बाद वृंदावन की यात्रा के लिए निकलते हैं, तो यात्रा करते करते मथुरा में आते हैं। मथुरा में केशव देव जी का मंदिर है, वहां पर नृत्य करते करते उनके सामने एक दूसरा ब्राह्मण आ जाता है, वो भी ऐसे ही नृत्य करने लगता है प्रसन्नता से। दोनों एक दूसरे को देखकर अधिक उत्साही होते हैं, अधिक नृत्य करते, अधिक कीर्तन करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जब कीर्तन और नृत्य समाप्त होता है, तो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन देता है, दोनों एक दूसरे को पूछा, आप कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनके बारे में और पूछते, आप कौन है? तो अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि मैं कई वर्षों पहले माधवेंद्रपुरी मथुरा में आए थे और उनसे मुझे दीक्षा प्राप्त हुई है। यहां तक कि माधवेंद्रपुरी ने मेरे घर में भोजन भी किया था। मैं आज आपको भी मेरे घर में निमंत्रण देता हूं। तो महाप्रभु तुरंत स्वीकार करते हैं, उनके घर में भोजन के लिए जाते हैं। तो उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे, तो उनको सारी सामग्री निकालकर ब्राह्मण दे देता है कि भगवान के लिए चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये क्या बात है, आपको भोजन करना चाहिए, आपको कुकिंग करना चाहिए, बलभद्र भट्टाचार्य क्यों क्यों दे रहे हैं। तभी वो सनोदिया ब्राह्मण कहते हैं कि असल में मैं सनोदिया ब्राह्मण हूं। सनोदिया ब्राह्मण ये वैश्यों के ब्राह्मण होते हैं और आप हो ब्राह्मण और सन्यासी। आपको मैं कैसे खिला सकता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या जब माधवेंद्रपुरी आए थे तो किसने भोजन बनाया था। बोले तो मैंने ही बनाया था। तो अगर माधवेंद्रपुरी आपके हाथ से खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। ये जो शास्त्र है ये बताते हैं कि इस ब्राह्मण ने उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जो शास्त्र है वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उसका निर्णय बदलते रहता है। लेकिन जो आचार्य है, खासकर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जैसे आचार्य, इनका जो व्यवहार है ये शास्त्रों का अंतिम निर्णय है, इसलिए मैं आपके हाथ से खाऊंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी को कौन सा स्तर दिया है कि माधवेंद्रपुरी ने अगर कोई कार्य किया है तो भगवान स्वयं उसको स्वीकार करते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु के आंखों में माधवेंद्रपुरी का स्थान था। दूसरी एक माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कथा आती है बाद में कि चैतन्य महाप्रभु जब पूरे दक्षिण भारत में घूमकर पंढरपुर पहुंच जाते हैं, ये ढूंढने के लिए उनके भाई कहां है शंकरारण्य, तो विट्ठल देव के मंदिर में जब नृत्य कर रहे हैं लोग अचंभित थे, कौन ब्राह्मण है कौन सन्यासी है, इतने सुंदर इतने भावुक हमेशा रोते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो किसी ब्राह्मण ने उनको भोजन के लिए बुलाया और ब्राह्मण के घर में भोजन लेते समय उस ब्राह्मण ने कह दिया कि पंढरपुर में आज की स्थिति में मेरे ही घर में श्री रंगपुरी रह रहे हैं। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु जब मिलने जाते हैं एक दूसरे को प्रणाम करके आलिंगन देते हैं और कथा में ऐसे चूर हो जाते हैं कि कई दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब इस प्रकार के जो भावनात्मक आदान प्रदान हो जाता है तो आखिरी दिन में श्रीरंगपुरी तभी पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज है श्रीपाद ईश्वरपुरी। तभी वे कहते कि मुझे लगा ही था कि इस प्रकार का जो भाव है ये माधवेंद्रपुरी के कनेक्शन के बिना कहीं नहीं आ सकता। जब मैं सोच ही रहा था कि इतने दिनों से कि आपका ये जो भाव है ये माधवेंद्रपुरी के बिना कैसे आ सकता है आपको, अब मुझे पता चला कि ये ईश्वरपुरी के कारण आपको मिला है। और तभी वे कहते हैं कि मैं एक बार माधवेंद्रपुरी के साथ घूमता फिरता नवद्वीप चला गया था। नवद्वीप में वहां एक अत्यंत उत्कृष्ट ब्राह्मण, उनके घर में हम लोग ठहरे थे। उनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा और उनके घर में उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सच्ची देवी। उन्होंने ऐसा एक व्यंजन बनाया था केले के फूलों से कि आज भी मैं उस शाक का स्वाद भूल नहीं पाया हूं। और उनका एक पुत्र भी था जिसने संन्यास लिया था, और आप जानते हैं इस पुत्र ने संन्यास लेकर सारे भारत में भ्रमण करने के बाद पंढरपुर में आकर यहीं उन्होंने समाधि ले ली और फिर से गोलोक धाम चले गए। उनका नाम था शंकरारण्य महाराज। इस प्रकार से आखिरी दिन चैतन्य महाप्रभु को यह वार्ता श्रीरंगपुरी से मिलती है, और तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पूर्वाश्रम में जगन्नाथ मिश्रा मेरे पिता थे और सची देवी मेरी माता थी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी माधवेन्द्रपुरी का चरित्र अलग अलग स्थानों पर वर्णन करते हैं, ये कहते हुए कि हमारी कोई योग्यता नहीं कि माधवेन्द्रपुरी के बारे में हम अधिक कहें। तो आज का ये बहुत पवित्र दिन है, श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी का तिरुभाव दिन। आज के दिन हम श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी को प्रार्थना कर सकते हैं कि कम से कम हम जप करते समय उस प्रकार का ध्यान कर सके। वो तो 24 घंटा कर सकते थे, हम कम से कम जप करते समय भगवान का नाम लेते समय भगवान को याद कर सके। तो उनकी कृपा अगर हमें प्राप्त करनी आज के दिन, तो उनको इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहें कि हम भगवान को कभी भूले नहीं और हमेशा उनको याद रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोपाल जी की जो सेवा है वो तो पहले वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ और एक पुत्र थे, दो पुत्र थे, उनको दी गई, सौंपी गई। ये जीव गोस्वामी के समय ही हुआ है, जब जीव गोस्वामी थे उसी समय ये गोपाल जी की सारी पूजा अर्चा ये उनको मिल गई विट्ठलनाथ को, और उन्हीं का ये संप्रदाय है। मुगलों के आक्रमण के कारण अनेकों विग्रह वृंदावन के, जयपुर आदि अनेकों स्थानों पर चले गए। आज भी हम जानते हैं महाराणा प्रताप ये एक ही ऐसा राजपूत राज्य था जो मुगलों को कभी शरण नहीं गया, किसी को शरण नहीं गया, ये सच्चे राजपूत थे। कहते हैं कि राणा प्रताप जब मरे, मरते दम तक अकबर ने और बाकी सारे जो उनके बाद भी जो लोग हैं सब लोग प्रयास करते रहे कि कैसे उसको हम लोग पकड़े, लेकिन जंगलों में रहते थे, उनकी वहीं पर राजधानी होती थी। नाथ द्वारा के बाजू में एक स्थान है, वहां पर राणा प्रताप का पूरा इतिहास लिखा है, बहुत सुंदर। तो उनके उनका राज्य ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिशों तक किसी को शरण नहीं गया। जब ब्रिटिश यहां से चले भी गए तो भी एक ही राज्य मेवाड़ का, मेवाड़ी नहीं वो, हाँ वो एक ही राज्य था जिसकी अलग मुद्रिका, उनका रुपया वैसा नहीं था, उनका अलग मुद्रिका थी आखिरी समय तक। पूरा भारत देश उनके कब्जे में था लेकिन मेवाड़ नहीं था। तो इस प्रकार का राज्य होने के कारण वहां के ब्राह्मणों ने सोचा कि इनके पास ही श्रीनाथ जी को लिया जाए, गोपाल जी को लेकर जाए। तो उन्होंने, क्योंकि उनका जंगल का राज्य था, तो कई लोगों को लगाया और जंगल में ये स्थान बनाया जो आज का हम नाथद्वारा देखते हैं। असल में घना जंगल था, और घने जंगलों में तोड़ते तोड़ते जब चले गए तो बाजू में उनको नदी दिखाई दी, बहुत पवित्र स्थान दिखा दिया, वहां पर फिर श्री गोपाल जी को स्थापित कराया गया और कई साल तक एक गुप्त रखा गया। उसके आसपास खड़े ब्राह्मण, बाहर से पूरा जंगल लग रहा है लेकिन अंदर भगवान की सेवा चल रही है। तो इस प्रकार से, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मूड है, आज भी हम देखेंगे नाथ द्वारा जाएंगे तो मूड क्या है उनका, वही बाल्य भाव, बहुत आनंद मस्ती में रहते हैं। आप नाथद्वारा के लोगों को देखेंगे हमेशा मस्ती में रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे तो स्वामी सिन्हाज जी है, कौन कहा हमारा बिगाड़ सकता है। हम वहां पर कुछ समय पहले जाके आए तो इतनी भीड़ थी कि मैं ब्राह्मणों से पूछा, भाई आप लाइन क्यों नहीं लगाते? बोला आप नहीं पहचानेंगे उसको, आप जानेंगे नहीं। गोपाल जी का दर्शन जो है, सिन्हा जी का दर्शन जो है, वो यमुना में खड़े रहकर करना चाहिए। ये उसका ओरिजिनल स्थान है कि यमुना में लोग खड़े होकर भगवान का दर्शन करते थे। तो ये लोगों की यमुना बहते रहनी चाहिए, और यमुना में जैसे आप खड़े रहेंगे तो लहरें आकर को टपक टपक ऐसे करेंगे ना, और आप थोड़ा थोड़ा आगे आगे ढकले जाएंगे। उसी प्रकार से यहां पर लोग आके आपको धक्का मारते रहेंगे, आप थोड़ा आगे जाएंगे फिर रुकेंगे, फिर धक्का मारेंगे फिर थोड़ा आगे जाएंगे रुकेंगे। ये यमुना का जो अनुभव है वो भीड़ में ही आता है। और आप बीच के प्रवाह में रहेंगे तो आप तुरंत निकल जाओगे, और आपको आनंद से दर्शन करना है तो आप पीछे चले जाइए, वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती। यमुना का जो प्रवाह है वो साइड में है, उसके किनारे पर आपको तकलीफ नहीं देगा, वहां शांति से दर्शन कर सकते। तो उसको शांति चाहिए पीछे जाइए, जो भीड़ में रहना चाहिए बीच में उसको धक्के और लहरें लगती रहेगी। इस प्रकार का सुंदर भाव है उनका यमुना का। और वहां पर सिद्धार्थ जी की सेवा इतनी उत्तम होती है कि वो ब्राह्मण कभी कभी भगवान को जल्दी जगा लेते हैं, कभी लेट जगाते हैं, इसलिए वहां मंगल आरती का समय भी फिक्स नहीं रहता। उसी दिन सवेरे लगता है कि आज इतने बजे होगा, आज इतने बजे, सब डेली टाइम टेबल चेंज होता रहता है उनका। अलग भाव है उधर, हम नहीं जानते। पुष्टि मार्ग, लेकिन पुष्टि मार्ग, जीव गोस्वामी, विठलनाथ, इनके संबंध बहुत गहरे थे। यहां तक कहा जाता है कि शायद जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी कोई बीमार थे तो श्री विठलनाथ बहुत सारी जड़ी भी बूटियां का औषधि लेकर उनके पास पहुंच जाते, उनकी सेवा करने के लिए। आज हम लोग कलयुग का प्रभाव है कि हम लोग संप्रदायों को ऐसे अलग कर देते हैं, तुम इस गुरु के हो, तुम उस गुरु के हो, इस संप्रदाय के हो, तुम छोटे हो, हम मोटे हैं, जो भी है, ये सब गलत धारणाएं हैं। जहां भक्ति है, भक्ति है, वो फिर किसी भी संप्रदाय से आए उसको प्रणाम ही करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।